आगे सबक देखिए भाई, फसल फी कैफियत हद व इकामति ही व इदा व जबल हद व कान जानी मोहसन रजमहु बिल हिजारति हत्ता यमूत लि अन्नहु अलैहि सलातु व सलाम रजम माइजन रजी अल्लाह तआला अन्हु व कद उहसिना وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم। भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताबुल हुदूद शुरू की थी। मैंने आपको बतलाया था कि शरई सजाएं दो किस्म की हैं, कुछ को हुदूद कहते हैं और कुछ को ताजीरात कहते हैं। हुदूद वो सजाएं हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं बतौर अल्लाह के हक के, और वो छह हैं भाई। नंबर एक हद जिना, नंबर दो हद शुरब खमर यानी शराब पीने की हद, नंबर तीन है हद सुकर मिन गैरिल खमर यानी शराब के अलावा कोई और नशावर मशरूब इस्तेमाल कर लिया तो उस पर भी हद लगाई जाएगी, और हद शुरब खमर भी 80 कोड़े है, और हद सुकर मिन गैरिल खमर ये भी 80 कोड़े है। अलबत्ता शराब के अंदर नशे को नहीं देखा जाएगा। कोई शख्स अगर एक कतरा भी शराब का पी लेता है और काजी के पास बात साबित हो जाती है तो उस पर हद जारी की जाएगी। जबकि शराब के अलावा कोई और नशावर मशरूब इस्तेमाल करता है तो उसमें नशा होना शर्त है, नशा होगा तो फिर ही हद जारी हो सकती है। और चौथी हद है हद कजफ भाई। हद कजफ भी मैंने आपको बतलाया था कि 80 कोड़े भी हैं और उसके साथ तमाम जिंदगी के लिए उस शख्स की गवाही अब काजी कबूल नहीं करेगा। और पांचवी हद है हद सरिका भाई, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। और छठी हद है हद कतए तरीक भाई यानी डाका डालने की हद भाई, और इसमें डाकू का एक हाथ काटा जाता है और मुखालिफ सिमत का पांव काटा जाता है भाई। तो साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अरबी जुबान में हद का माना है रोकना और मना करना, और इस्तिलाह शरीयत में वो सजा है जो बतौर अल्लाह के हक के मुकर्रर हो। तो इसमें दो चीजें जरूरी हैं, एक तो उसका मुकर्रर होना और दूसरा अल्लाह के हक के तौर पर होना। लिहाजा किसास जो है हद की तारीफ से निकल गया, इसलिए क्योंकि किसास जो है वो बंदे का हक है। मकतूल के अवलिया इसको माफ भी कर सकते हैं और माल भी ले सकते हैं सुलह करके, जबकि दूसरी किस्म की सजाएं ताजीरात कहलाती हैं और वो काजी की सवाबदीद पर हैं। काजी जितना मुनासिब समझे उतनी सजा दे सकता है। अलबत्ता मैंने बतलाया था कि ये जो हद है ये इंतहा दर्जे की सजाएं हैं, तो इनका मामला बड़ा नाजुक है, ये अदना शुबे से भी साकित हो जाती हैं। चुनांचे उलमा फरमाते हैं अल हुदूद तंदरिउ बिशुबहात, कि हुदूद जो है शुभों की वजह से साकित हो जाती हैं, जबकि ताजीर जो है वो शुबे की वजह से साकित नहीं होती। और नीज ताजीर जो है इसकी मिकदार हद से कम होनी चाहिए, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा ताजीर जो है वो 39 कोड़े तक हो सकती है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि हुदूद के अंदर असल मकसद यह है ताकि लोग इस जुर्म से बाज आ जाएं, जुर्म करने वाला भी आइंदा कभी यह जुर्म करने की जुर्रत ना करे और लोगों को भी इबरत हासिल हो वो भी ये जुर्म न करें। बाज उलमा ने लिखा कि इस ताजीर का मकसद यह है ताकि वो शख्स इस गुनाह से पाक हो जाए, उसने ये गुनाह किया है तो जब उस पर हद जारी होगी तो उसका यह गुनाह खत्म हो जाएगा, अब आखिरत में उसका मुआखजा नहीं होगा इस पर। लेकिन साहिब हिदाया ने बतलाया कि गुनाह से पाकी असल नहीं है, और दलील इसकी यह है कि काफिर के हक में भी यह हद मशरूअ है, काफिर पर भी हद जारी की जाएगी। और काफिर जो है उसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका गुनाह माफ हो गया है, क्योंकि उसका कुफर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कुफर के अंदर डूबा हुआ है, लिहाजा यह हद कैसे उसके गुनाह को खत्म कर सकती है। उसके बाद सबसे पहले जीना और उसकी हद को बयान करना शुरू किया साहिब हिदाया ने, और बतलाया कि जीना जो है जीना इसे कहते हैं कि कोई मुकल्लफ यानी आकिल बालिग अपनी शहवत पूरी करे औरत के अगले मकाम में, और वो औरत मिलके निकाह से भी खाली हो और मिलके यमीन से भी खाली हो, यानी न तो इसकी मनकूहा हो और न ही इसकी ममलूका बांदी हो और न ही वहां किसी और किस्म का कोई शुबा मौजूद हो, तो इस किस्म की हरामवती को जिना कहते हैं। और जिना जो है बैयना से भी साबित हो सकता है और इकरार के जरिए भी। और जिना के अंदर बैयना जो है वो ये है कि चार मर्द गवाही दें, चार आदिल आदमी, तो फिर जिना साबित होगा। मैंने आपको बतलाया था कि हुदूद के अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं, हुदूद के मामलात में सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी, और मर्द भी आदिल होना चाहिए, मर्द भी आदिल होना चाहिए। अगर मर्द आदिल नहीं है तो फिर हद साबित नहीं होगी। वजह यह कि यह इंतहा दर्जे की सजाएं हैं, तो अदना सा भी शुबा किसी चीज में आ गया तो हद साकित हो जाएगी। तो और इस हदीस में भी आता है कि तुम हुदूद को शुबों के जरिए टाल दिया करो, तो लिहाजा कोशिश की जाएगी किसी तरह हद को टाल दिया जाए और इस शख्स को यह सख्त तरीन सजा न दी जाए। तो लिहाजा जिना के लिए चार गवाहों का होना जरूरी है भाई, चार गवाहों का। और फिर जब वो गवाह गवाही देने आए तो काजी उनसे पांच सवाल पूछेगा। काजी उनसे पूछेगा कि जिना किसे कहते हैं और जिना कैसे किया जाता है और इस शख्स ने कहां जिना किया था और किस जमाने में इसने जिना किया है और किस औरत के साथ इसने जिना किया है, ये पांच सवाल पूछेगा। तो पहला सवाल यह है कि जिना किसे कहते हैं और दूसरा सवाल है कि यह कैसे किया जाता है। मैंने बताया कि वजह यह है कि बहुत से लोगों को भी जिना की हकीकत का पता नहीं होता भाई, हत्ता कि वो अजनबी औरत के साथ अगर कोई गले भी मिल लेगा या उसका बोसा भी ले लेगा, वो इसको भी जिना समझते हैं। हालांकि ये अपनी जगह गुना है लेकिन यह जिना नहीं है, इसकी वजह से हद जिना जारी नहीं होगी भाई। तो हद जिना वो है कि जिसके अंदर दुखूल पाया जाए भाई। तो काजी उनसे पूछेगा कि जिना किसे कहते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि बाज लोग हराम वती को ही जिना समझते हैं, हालांकि हर हराम वती जिना नहीं है। जैसे कोई शख्स अपनी बीवी से हैज के अय्याम में सोहबत कर ले, अब यह वती हराम तो है लेकिन जिना नहीं है भाई। और फिर काजी उनसे यह भी पूछेगा कि इसने कहां जिना किया, क्योंकि हो सकता है इसने दारुल हर्ब में जिना किया हो और दारुल हर्ब में किसी ने जिना किया हो तो उस पर हद जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि दारुल हर्ब हमारी हुकूमत के तहत नहीं आता, वहां हमारे खलीफा का हुक्म जारी नहीं हो सकता भाई। और नीज काजी यह भी पूछेगा कि इसने कब जिना किया, वजह यह कि कहीं ऐसा ना हो यह बात पुरानी हो गई, और जब बात पुरानी हो गई तो अब उस जिना की वजह से भी हद जारी नहीं की जा सकती। और वो कितना जमाना है, तो साहिबैन फरमाते हैं एक महीना, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं छह महीने। तो मैंने आपको बतलाया था वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है कि इतना वक्त गुजर गया है, मालूम हुआ गवाहों का इरादा शुरू में यह था कि वो इस पर पर्दा डाल दें, लेकिन फिर बाद में कोई नई दुश्मनी पैदा हुई है जिसकी वजह से अब ये गवाही देने आ गए हैं। अगर इनको अल्लाह के हुदूद का इतना ख्याल होता तो शुरू में ही फौरन आ जाते। और मैंने बताया ये भी उस सूरत में है कि जब उनके आने की जगह जो है वो एक माह की दूरी पर ना हो, अगर वो जगह ही इतनी दूर है कि वहां से आते आते काफी अरसा लग जाता है, तो फिर इस सूरत में इनकी गवाही को सुना जाएगा भाई। और फिर यह भी पूछा जाएगा कि किस औरत से जिना किया है, इसलिए क्योंकि बाज औकात वहां पर शुबा मौजूद होता है कि खुद गवाहों को और वो शख्स जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उनको भी शुबे का इलम नहीं होता, जैसे बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ले, तो यहां शुबा की वजह से बाप पर हद जारी नहीं की जा सकती भाई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया था अंता व मालुका ली अबी का। तो फिर जब गवाह ये सारा कुछ बयान कर दें तो फिर उसके बाद काजी जो है इन गवाहों के बारे में पता करवाएगा, सिर्रन भी पता करवाएगा और ऐलानिया भी, यानी पोशीदा तौर पर भी और लोगों के सामने ऐलानिया भी। पोशीदा तादील कैसे करवाएगा, वो उसकी सूरत यह है कि काजी जो है खत लिखेगा ऐसे आदिल आदमी को जो गवाह को जानता है भाई, और उससे पूछेगा यह आदमी जिना के मसले में गवाही देने आया है, क्या यह आदिल है या आदिल नहीं। तो अगर वो आदिल हुआ तो वो शख्स उसके नीचे लिख देगा कि ये आदिल है, और अगर वो आदिल नहीं है तो वो तादील करने वाला उस जगह को खाली छोड़ देगा या लिख देगा अल्लाह जानता है। तो इस तरह काजी तादील करवाएगा, ये है पोशीदा तौर पर। और फिर ऐलानिया भी तादील करवाएगा कि उन तादील करने वालों को बुलवाएगा और उनके सामने इस गवाह को खड़ा करेगा और वो कहेंगे कि हां ये है वो आदमी जिसकी हमने तादील की थी। ये सब इसलिए किया जाएगा कि किसी तरह हद को टाला जा सके। तो जब उन गवाहों का आदिल होना साबित हो जाएगा तो फिर काजी फिर हद का फैसला कर देगा भाई। और अगर गवाहों की तादील ना हुई, यानी मालूम हुआ कि ये गवाह तो फासिक हैं, ये इनमें से चंद एक फासिक हैं और जो आदिल हैं उनकी तादाद चार तक नहीं पहुंच रही, तो फिर इस सूरत के अंदर हद साबित नहीं होगी भाई, और काजी ये हद वाली सजा नहीं देगा। और नीज उन गवाहों पर भी कोई हद कजफ वगैरह जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि बेशक वो फासिक हैं लेकिन उन्होंने गवाही से तो रुजू नहीं किया, हो सकता है वो सच्चे हों। और गवाही से रुजू करना, मैंने बतलाया कि गवाही से रुजू इसे कहते हैं कि गवाह कह देता है कि मैंने झूठी गवाही दी थी, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, तो देखो ये गवाह अपनी गवाही से रुजू कर रहा है। तो अगर कोई गवाह रुजू कर लेगा तो फिर इस सूरत में उस गवाह पर हद कजफ जारी होगी कि इसने एक मुसलमान पर जिना की तोहमत लगाई है, तो इसको 80 कोड़े भी लगेंगे और आइंदा जिंदगी भर कभी अब काजी इसकी गवाही कबूल नहीं करेगा भाई। तो अगर कोई गवाह रुजू कर ले उसको तो हद कजफ लगेगी, तो बाकियों पर भी हद कजफ जारी होगी या नहीं, तो उसमें याद रखना बाकी गवाहों की तादाद को देखा जाएगा। अगर बाकी गवाह अभी भी चार हैं, मसलन 6, 7 या 10 अफराद आए थे गवाह के तौर पर, तो फिर अगर अभी भी चार गवाह मौजूद हैं तो फिर बाकियों पर हद कजफ जारी नहीं होगी। और अगर बाकी गवाह जो रह गए हैं वो 4 से कम हो गए हैं, वो 3 रह गए या 2 रह गए, तो इसका मतलब है सब ने झूठ बोला है, क्योंकि 4 गवाह पूरे नहीं हैं। तो बाकी रह जाने वाले गवाहों पर भी हद कजफ जारी होगी, अगरचे उन्होंने रुजू नहीं किया, अगरचे उन्होंने रुजू नहीं किया लेकिन फिर भी उन पर हद कजफ जारी होगी भाई। और साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि गवाहों ने गवाही दे दी है, अब काजी इनकी तादील करवाएगा सिरन भी और अलानिया भी, तो इसमें भी हो सकता है 2 दिन 4 दिन लग जाएं। तो जब तक जो ये जो मुलजिम है जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है इसको काजी कैद में रखेगा ताकि कहीं ये भाग ना जाए भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि इकरार के जरिए भी जिना साबित हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी 5 शर्तें हैं भाई, 5 शर्तें। एक तो यह कि वो इकरार करने वाला आकिल बालिग हो, क्योंकि बच्चे और मजनून के कौल का कोई एतबार नहीं है, और नीज वो 4 मरतबा इकरार करे, और वो 4 दफा इकरार 4 अलग अलग मजलिसों में हो, और वो 4 मजलिसें इकरार करने वाले की हों, ना कि काजी की भाई, काजी की चाहे वही एक मजलिस हो लेकिन इकरार करने वाले की 4 अलग मजलिसें हों। और नीज 5वीं कैद यह है कि वह जब भी आए, जब भी इकरार करे तो काजी जो है उसको रद्द कर दे, उसको डांट दे, नापसंदीदगी का इजहार करे और उसे वापस लौटा दे कि भाई अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से मगफिरत तलब करो और डांट कर उसको वापस लौटा दे। तो फिर जब 4 मरतबा उसका इकरार पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद काजी उससे वही सवालात पूछेगा जो काजी गवाहों से पूछता था। अलबत्ता अब इसमें यह नहीं पूछेगा कि कब किया है जिना, क्योंकि गवाहों के मसले में अगर बात पुरानी होती थी तो दिलों में बदगुमानी आती थी, लेकिन इकरार के मामले में अगर बात पुरानी भी हो जाए तो दिलों में बदगुमानी नहीं आती। अलबत्ता बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर जमाने के बारे में भी पूछ ले तो भी जायज है, इसलिए क्योंकि हो सकता है इसने बचपन में जिना किया हो और बचपन के जिना पर तो हद जारी नहीं हो सकती भाई। और फिर यह भी बतलाया साहिब हिदाया ने कि इकरार करने वाला अपने इकरार से रुजू भी कर सकता है, और जब यह इकरार से रुजू करेगा तो हद साकित हो जाएगी, चाहे हद जारी होने से पहले ही यह रुजू कर ले, चाहे जब हद जारी हो रही है बीच में इसने दरमियान में रुजू कर लिया, तो इस सूरत में भी उसके रुजू को कबूल कर लिया जाएगा और उसका रास्ता छोड़ दिया जाएगा। और जब चौथी मर्तबा में वो इकरार कर ले तो यह भी मुस्तहब है कि काजी उसे रुजू करने की तलकीन करे कि भाई हो सकता है आपने बोसा लिया होगा या आपने हाथ से छुआ होगा, तो इस तरीके पर काजी उसे रुजू की तलकीन करेगा। भाई अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फी कैफियत अल हद व इकामतिही व इदा वजब अल हद व कान अज़ानी मुहसनन रजमहु बिल हिजारति हत्ता यमूत। जी, फसलुन फी कैफियत अल हद व इकामतिही, इस फसल में साहिब हिदाया तरीका बयान फरमाएंगे कि हद कैसे जारी की जाएगी, हद कैसे जारी की जाएगी। तो कहते हैं फसलुन फी कैफियत अल हद, कैफियत का माना यहां कर लें सूरत के, फसलुन फी कैफियत अल हद ऐ फी सूरत अल हद, ये फसल है हद की सूरत के बयान में, वह इकामती ही और उसके कायम करने के बयान में कि किस सूरत में किस तरीके पर हद कायम की जाएगी। तो कहते हैं फसलुन फी कैफियत अल हद व इकामती ही, ये फसल है हद की सूरत और उसके कायम करने के बारे में। व इदा वजब अल हद, और जब हद साबित हो जाए, हद जब वाजिब हो जाए। व कान जानी मोहसनन, और जिना करने वाला मोहसन है, तो रजमहु बिल हिजारति हत्ता यमूता, तो काजी उसको रजम करेगा पत्थरों से यहां तक कि वो मर जाए। मोहसन भाई, याद रखो आप पढ़ चुके हैं कि जिना करने वाला अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो फिर 100 कोड़े लगाए जाएंगे, जबकि गुलाम या बांदी जो हैं, याद रखो उनको रजम नहीं किया जाता। अगर उनमें से कोई जिना कर लेता है तो उनकी सजा सिर्फ यह है कि उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे, और गुलाम या बांदी की सजा आजाद के मुकाबले में निसफ होती है, तो गुलाम या बांदी को 50 कोड़े लगाए जाएंगे बतौर हद जिना के। तो शादीशुदा आदमी हो तो उसको रजम किया जाता है। तो अब इस शादीशुदा से क्या मुराद है, तो याद रखो साहिब हिदाया भी आगे चलकर एक दो सफे बाद बयान फरमाएंगे। शादीशुदा को मोहसन कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहसन, आसान लफ्जों में माना कर दिया जाता है शादीशुदा के। हालांकि इसमें 7 शर्तें हैं भाई, एहसान और रजम, इसके अंदर 7 शर्तें हैं कि वो शख्स जो है आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उसने सहीह निकाह किया हो, और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी से सोहबत भी की हो, और 7वीं शर्त यह है कि खावंद और बीवी दोनों मोहसन हो, दोनों सिफत एहसान पर हो। तवज्जो है, फिर सुनो, आगे साहिब हिदाया भी बयान करेंगे, लेकिन अभी से अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि मोहसन वो है जिसमें 7 शर्तें पाई जाएं, उसको रजम किया जाएगा। जिस शख्स के अंदर इनमें से 1 शर्त भी कम हो गई, उसको फिर संगसार नहीं करेंगे, उसे रजम नहीं करेंगे, बल्कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो मोहसन वो है जिसमें 7 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त यह कि वह आजाद हो, यानी गुलाम ना हो। दूसरी शर्त आकिल हो, मालूम हुआ मजनून ना हो। तीसरी शर्त है कि वो बालिग हो, मालूम हुआ कि बच्चा ना हो। और चौथी शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, मालूम हुआ काफिर जिम्मी वगैरह ना हो। और 5वीं शर्त यह है कि उसने निकाह सहीह किया हो। और 6ठी शर्त यह है कि उस निकाह सही के बाद उसने बीवी से सोहबत भी की हो। और 7वीं शर्त यह है कि खावंद और बीवी दोनों सिफत एहसान पर हों, यानी जो सिफतें खावंद में थीं, आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान और निकाह सहीह, यही सारी शर्तें उसकी बीवी में भी हों, आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान और उसने निकाह सहीह किया हो, और उस निकाह सहीह में खावंद ने उसके साथ सोहबत भी की हो। तो फिर इस सूरत में यह शख्स मोहसन कहलाएगा, और जब मोहसन है और इसने जिना किया है तो अब इसको रजम किया जाएगा। वजह यह कि साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि जब यह शख्स आजाद है तो देखो अल्लाह का इस पर कितना बड़ा इनाम है कि यह किसी का गुलाम नहीं, आजाद है, आकिल है, अल्लाह ने अकल भी दी है, बालिग है, मुकल्लफ भी है अफाल का, और नीज ये मुसलमान भी है, और फिर इसको निकाह सही भी इसने किया, अल्लाह ने इसको इतनी तौफीक दी कि इसने निकाह सही भी कर लिया, उसके लिए भी अल्लाह ने असबाब दे दिए, फिर उसके बाद इसने उस निकाह सही के बाद अपनी बीवी से सोहबत भी कर ली और बीवी भी उसको इसी किस्म की मिली है जो आजाद भी है, आकिल बालिग मुसलमान है, उसमें भी यह सारी चीजें उसके अंदर भी पाई जा रही हैं। इसके बाद भी यह शख्स अगर जिना करता है तो यह बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है भाई
जी।
उसके बाद भी यह जिना कर रहा है तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, लिहाजा अब सजा भी उतनी ही सख्त होगी ताकि माशरे के अंदर आइंदा किसी को जुर्रत ना हो इस किस्म का जुर्म करने की भाई। तो कहते हैं वह ईदा वजब अल हद, और जब हद वाजिब हो जाए, वकान जानी मोहसनन, और जिना करने वाला मोहसन है, रजमहू बिल हिजारती, तो काजी उसको रजम करेगा पत्थरों से, हत्ता यमूता, यहां तक कि वो मर जाए। तो रजम का तरीका याद रखो, रजम का तरीका यह है कि लोग आकर सफें बना लेंगे, सफें बना लेंगे, और फिर पहली सफ वाले रजम करेंगे, फिर जब वो कर चुके हैं फिर वो हट जाएंगे, फिर दूसरी सफ वाले आएंगे, फिर तीसरी सफ वाले आएंगे। तरीका समझ में आ रहा है? लेकिन याद रखो, अगर ये हद जिना गवाही की वजह से साबित हुई है तो इब्तिदा गवाहों से करवाएंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग सफ दर सफ रजम करेंगे। इब्तिदा किससे करवाएंगे? गवाहों से। तो गवाहों का इब्तिदा करना हमारे नजदीक शर्त है, और शर्त है तो मशरूत है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। तो गवाह आएंगे, पहले गवाह रजम करेंगे, वो पत्थर मारेंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग शुरू करेंगे। वजह यह कि बाज औकात कोई आदमी झूठी गवाही की जुर्रत कर लेता है, लेकिन जब एक शख्स को पत्थर मार मार कर कत्ल किया जाएगा तो उस वक्त उसको खौफ आ जाता है और वो अपनी गवाही से बाज़ौकात रुजू कर लेता है। तो ये सब हीले हैं किसी तरह हद को टाल दिया जाए। तो इसलिए गवाहों से इब्तिदा करवाई जाएगी कि शायद इनमें से कोई इनकार कर दे और हद टल जाए। तो अगर गवाहों ने पत्थर मारने से इनकार कर दिया, काजी कह रहा है शुरू करो पत्थर मारो, वो पत्थर ही नहीं मार रहे, तो याद रखो हद साकित हो गई। मालूम हुआ गवाहों ने रुजो कर लिया है
जी।
गवाह पत्थर नहीं मार रहे, मालूम हुआ इन्होंने रुजो कर लिया है, लेकिन इन गवाहों पर हद कजफ भी जारी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कोई जुबान से रुजो नहीं किया, सिर्फ पत्थर मारने से इनकार किया है। और अगर ये गवाह उस दिन गायब हो गए फिर भी याद रखो हद साकित हो गई, और अगर ये गवाह उससे पहले मर गए फिर भी हद साकित हो गई। याद रखो, देखो शरीयत का निजाम कितनी कोशिश है कि किसी तरह हद को टाल दिया जाए। हां, अगर ये बहुत ज्यादा मरीज हैं, ये पत्थर मारने से ही आजिज हैं, तो फिर इस सूरत में, फिर इस सूरत में इनकी इब्तिदा शर्त नहीं। लेकिन अगर ये बीमार भी हैं, इनको वहां मंगवाया जाएगा, बुलवाया जाएगा, और इनके सामने फिर काजी जो है वो इब्तिदा करेगा, या हाकिम जो है वो इब्तिदा करेगा, तो उस वक्त भी इनको वहां बुलवाया जाएगा भाई कि शायद ये क्या कर लें, रुजू कर लें, किसी तरह इस हद को टाल दिया जाए भाई। तरीका समझ में आ गया? तो लिहाजा जब गवाही से जिना साबित हो तो पत्थर मारने की इब्तिदा गवाहों से की जाएगी, और अगर इकरार की वजह से जिना साबित हुआ है, उस आदमी ने खुद इकरार किया था, तो फिर इस सूरत में इब्तिदा वो काजी या जो हाकिम है वो इब्तिदा करेगा, और फिर उसके बाद बाकी लोग भी रजम शुरू कर देंगे। तरीका समझ में आ गया? तो कहते हैं वईदा व जबल हद, और जब हद वाजिब हो जाए, वकान जानी मोहसनन, और जिना करने वाला मोहसन है। मोहसन मैंने बतलाया किसे कहते हैं, जो सात शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? आजाद, आकिल, बालिग, मुसलमान, और निकाह सही किया हो, और छठी शर्त है निकाह सही के बाद सोहबत भी की हो बीवी से, और सातवीं शर्त है कि खावंद और बीवी दोनों के अंदर यह सारी सिफतें हों, यानी दोनों आजाद आकिल बालिग मुसलमान हो और निकाह सही किया हो और निकाह सही के बाद सोहबत की हो गई। तो कहते हैं वकान जानी मोहसनन, और जिना करने वाला मोहसन हो, शादीशुदा हो, रजमहु बिल हिजारति हत्ता यमूत, तो उसको काजी रजम करेगा पत्थरों से यहां तक कि वो मर जाए। लिअन्नहु अलैहि सलात व सलाम रजम माइजन, इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माइज रजी अल्लाह तआला अन्हु को रजम फरमाया। वकद उहसिना, इस हाल में कि वो मोहसन थे, माइज रजी अल्लाह तआला अन्हो मोहसन थे। वकाल फिल हदीस अल मारूफी, और नीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस में फरमाया है, वजीनम बाद इहसानिन, वजीनम बाद इहसानिन। ये हाशिए में पूरी हदीस दी हुई है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु दमु इम मुस्लिमिन, कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है, इल्ला बि इहदा सलासिन, मगर तीन चीजों में से एक की वजह से जी। और वो तीन चीजें क्या हैं? नंबर एक, जिनम बाद इहसानिन, कि मोहसन होने के बाद वो जिना कर ले। वर्तिदादिम बाद इस्लामिन, या इस्लाम लाने के बाद वो मुर्तद हो जाए। वह कत्ल नफ्सिन बगैर हक़िन, या वो ना हक तौर पर वो किसी को कत्ल करे, तो इसको भी किसास में कत्ल किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मुसलमान का खून सिर्फ तीन वजह से हलाल हो सकता है भाई। एक ये कि वो मोहसन होने के बाद जिना कर ले, या मुसलमान होने के बाद वो मुर्तद हो जाए, या वो किसी का ना हक कत्ल कर दे। इसके अलावा किसी और वजह से मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं है। तो कहते हैं वकाल फिल हदीस अल मारूफी, और मारूफ हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, यानी हदीस मारूफ है, सबको इलम है। तो कहते हैं वकाल फिल हदीस अल मारूफी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस में फरमाया, वजीनम बाद एहसानिन, और मोहसन होने के बाद जीना करना। वाला हादा इजमा उस सहाबती रजी अल्लाह तआला अन्हुम, और इसी पर इजमा है सहाबा का, यानी इस रजम पर सहाबा का इजमा है कि अगर जिना करने वाला मोहसन हो तो उसे रजम किया जाएगा। इस पर तमाम सहाबा का इजमा है। काला, इस काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयुखरिजुहू इला अर्ज़ फ़ज़ाइन, फ़ज़ा का माना वसी और कुशादा। वयुखरिजुहू इला अर्ज़ फ़ज़ाइन, और काजी उस शख्स को, उस जानी को लेकर निकलेगा ऐसी जमीन की तरफ, फ़ज़ाइन जो खुली हो, यानी किसी खुले मैदान में उसको लेकर जाएगा। वयबतदी उश्शुहूद बिरजमी ही, और गवाह इब्तिदा करेंगे उसके रजम की। सुम्मल इमाम, फिर उसके बाद हाकिम। सुम्मन नासु, फिर उसके बाद लोग भाई। कज़ा रुविया अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह रिवायत किया गया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। वली अन शाहिद कद यतजासरु अलल अदाई, और इसलिए क्योंकि गवाह जो है, कद यतजासरु, कभी जुर्रत कर लेता है, अलल अदाई, गवाही की अदायगी पर, यानी झूठी गवाही की अदायगी पर बाज़ औकात गवाह जुर्रत कर लेता है। सुम्म यस्ताजिमुल मुबाशरता, इस्ताजमा यस्ताजिमु के माने हैं बड़ा समझना। सुम्म यस्ताजिमुल मुबाशरता, फिर उसको सरंजाम देने को वो बड़ा समझता है। दूसरे को पत्थर मारकर कत्ल करना, इसको वो बड़ा समझता है, तो खौफ आ जाता है और उसको वो रुजू कर लेता है। तो कहते हैं वली अन शाहिद कद यतजासरु अलल अदाई, और इसलिए क्योंकि गवाह जो है, कभी जुर्रत कर लेता है झूठी गवाही की अदायगी पर। सुम्म यस्ताजिमुल मुबाशरता, फिर वो उसको सरंजाम देने को बड़ा समझता है। फयरजू, तो रुजू कर लेता है। फकान फी बदा अति इख्तियाल लिदर ई, तो लिहाजा उस गवाह के इब्तिदा करने में हीला है, लिदर ई, हद को टालने का, इसमें हद को टालने का हीला है कि किसी तरह ये रुजू कर ले। वकाल शाफी रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला युश्तरतु बदाअतुहु, कि गवाह के इब्तिदा करने की शर्त नहीं है। इतबारम बिल जल्दी, कियास करते हुए कोड़ों पर, कोड़े लगाना। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस रजम को कियास करते हैं कोड़े लगाने पर, और कोड़े लगाना उसमें तो गवाह की शर्त नहीं है। इंदल अहनाफ भी कोड़े लगाना, उसमें भी गवाहों के कोड़े लगाने की शर्त नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह जानी को जब कोड़े लगाए जाते हैं तो वहां इब्तिदा गवाहों से नहीं की जाती, तो यहां रजम के अंदर भी पत्थर मारने की इब्तिदा गवाहों से नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वकाल शाफई रहमहुल्लाह ला युश्तरतु बदाअतुहु इतबारम बिल जल्दी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं गवाह की इब्तिदा शर्त नहीं होगी कियास करते हुए कोड़े लगाने पर। कुल ना, हम कहते हैं कुल्लु अहदिन ला युहसिनुल जल्दा, कि हर एक अच्छी तरह कोड़े नहीं लगा सकता, हर एक अच्छी तरह कोड़े नहीं लगा सकता। याद रखो, आगे चलकर आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि जो कोड़े लगाए जाएंगे 100 कोड़े, ये भी पूरी ताकत से नहीं मारने भाई, पूरी ताकत से मारो तो वो तो आदमी ही मर जाएगा 100 कोड़ों के अंदर। लिहाजा कोड़े भी मुतवस्सित दर्जे के मारने हैं, मुतवस्सित दर्जे की जर्ब होनी चाहिए। हत्ता के कोड़े को जब ऊपर उठाए मारने के लिए तो सर से ऊपर हाथ भी नहीं जाना चाहिए। देखो, अगर पूरी ताकत से जर्ब लगाना चाहे तो हाथ को सर से ऊपर ले जाता है, फिर पूरी कुव्वत से जर्ब लगाता है, लेकिन यहां पर जब कोड़े लगाए जा रहे हैं तो हाथ को सर से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो देखो, ये मुतवस्सित दर्जे की जर्ब है, कुछ तकलीफ हो और कुछ लोगों के लिए इबरत का सामान बन जाए, उस आदमी को कत्ल करना और हलाक करना मकसूद नहीं है, लिहाजा पूरी ताकत से कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे गवाहों से कोड़े लगाने की इब्तिदा की जाए ये शर्त नहीं है, इसी तरह गवाहों से रजम की इब्तिदा भी शर्त नहीं है। हम कहते हैं कोड़े हर एक अच्छी तरह नहीं लगा सकता, गवाहों की अगर हम शर्त लगा दें कि इन्होंने ही कोड़े लगाने हैं तो हो सकता है ये तो कहीं ज्यादा जोर से कोड़े न लगाएं, वो शख्स कहीं हलाक ही ना हो जाए। लिहाजा इसलिए हमने कहा कि कोड़ों के अंदर गवाहों से इब्तिदा शर्त नहीं है भाई। तो कुल ना, हम कहते हैं कुल्लु अहदिन ला युहसिनुल जल्दा, कि हर एक अच्छी तरह कोड़े नहीं लगा सकता। फरुबमा यकाउ मोहलिकन, तो बसाओकात कोड़े लगाना मोहलिक हो जाता है, यानी उसकी वजह से दूसरे की जान चली जाती है। वल इहलाकु गैर मुस्तहक़िन, और हलाक करना यह तो गैर मुस्तहक है, हलाक करने का तो यह हकदार नहीं है कि इसको हलाक कर दिया जाए। तो कहते हैं वल इहलाकु गैर मुस्तहक़िन, और हलाक करना इसका तो इस्तेहकाक नहीं है उस आदमी का। वला कदालिका रजमु, और रजम तो इस तरह नहीं है, उसमें तो दूसरे को हलाक करना ही मकसद है भाई। तो कहते हैं वला कदालिकर रजम, और रजम तो ऐसा नहीं है। लिअन्नहु इतलाफुन, क्योंकि रजम जो है वो तो हलाक करना है, वो तो तलफ करना है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं फइनिम तना शुहूद मिन लिबतिदाई, और अगर बाज रहे गवाह इब्तिदा करने से, अगर रुक गए गवाह इब्तिदा करने से, सकतल हद, तो हद साकित हो जाएगी। लिअन्नहु दलालतुर रुजूई, क्योंकि ये रुजू की दलील है जी। ये रुजू की दलील है, अलबत्ता हद कजफ इन पर नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने जुबान से रुजू नहीं किया भाई। वकदा इदा मातू, और इसी तरह हद साकित हो जाएगी जब गवाह मर जाए। अव गाबू, या वो गायब हो जाए। फिर जाहिर रिवायत, जाहिर रिवायत में है। लिफवात शर्ती, शर्त के फौत हो जाने की वजह से, और गवाहों से इब्तिदा तो शर्त थी भाई, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं है। अलबत्ता मैंने बताया अगर गवाह बहुत ज्यादा बीमार हैं वो इब्तिदा कर ही नहीं सकते तो फिर उनको वहीं पर ले आएंगे और उनके सामने जो है वो काजी जो है इब्तिदा करेगा, ये जो हाकिम है वो इब्तिदा करेगा। आगे देखिए वह इनकान मुकिर्रन, और अगर ये जानिए मोहसन जो है ये मुकिर है, इकरार करने वाला है, यानी जिना इसके इकरार से साबित हुआ है, तो फिर हाकिम या काजी वो इब्तिदा करेगा रजम की। वह इनकान मुकिर्रन, और अगर वो जानिए मोहसन जो है वो इकरार करने वाला है, इब्तदा अल इमाम, तो इमाम इब्तिदा करेगा। सुम्मन नासु, फिर लोग। कदा रुविया अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह रिवायत किया गया है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। वरमा रसूलुल्लाह अलैहि सलात वस्सलामुल गामिदियत बिहसातिम मिसलल हिम्मिसति, ये गामिदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये कबीला गामिद की एक औरत थी, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के पास खुद तशरीफ लाई और कहने लगी या रसूलुल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मुझ पर हद जारी कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मगफिरत तलब करो और तौबा करो, और भेज दिया। और फिर ये दोबारा आईं तो और फिर आखिर कहने लगीं कि या रसूल अल्लाह वल्लाह मैं जिना से हामिला हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अभी तुम चली जाओ, जब बच्चे को जन्म दे दो तो फिर आना। चुनाचे वो चली गई और फिर जब उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर हुजूर के पास आई, बच्चे को भी इन्होंने उठाया हुआ था और कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है, आप मुझ पर हद जारी फरमा दीजिए और मुझे इस गुनाह से पाक फरमा दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इस बच्चे को फिर ले जाओ और इसको पूरे दो साल तक दूध पिलाओ, यहां तक कि ये कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए। चुनाचे वो उस बच्चे को ले गई, दूध पिलाती रहीं और उसके बाद फिर दो ढाई साल के बाद बच्चे को लेकर आईं कि जब वो रोटी के खाने के काबिल हो गया था। फिर दोबारा हुजूर के पास आईं, वो बच्चे को भी उठाया हुआ था और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और कहने लगी या रसूल अल्लाह ये अब रोटी खाने के काबिल हो गया है, अब मुझ पर हद जारी फरमा दीजिए और मुझे पाक कर दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि नहीं, यहां तक कि ये बच्चा बेनियाज हो जाए, यानी अपने अफाल खुद सरंजाम देने लगे, यानी सात आठ साल का हो जाए तो फिर उसके बाद आना। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा। तो फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें रजम करने का हुक्म दिया। चुनांचे उनके लिए जमीन में गढ़ा खोदा गया तो उनको सीने तक गढ़े में दबा दिया गया और फिर उसके बाद उनको रजम किया गया। और इब्तिदा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई, क्योंकि ये जिना खुद इकरार से साबित हुआ था और जब जिना खुद इकरार से साबित हो तो जो इमाम या काजी होता है वो इब्तिदा करता है। चुनांचे रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने चने के दाने के बराबर एक बहुत छोटी सी कंकरी उनको मारी गई और फिर उसके बाद और लोगों ने रजम शुरू कर दिया भाई। तो वही जिक्र फरमा रहे हैं कि वरमा रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलामुल गामिदियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिहसातिन, हसात भाई स्वाद के साथ है और बोलता है आखिर में, हसात कंकरी को कहते हैं भाई, छोटा पत्थर। मिसलुल हिम्मिसाती, हिम्मिसा हा के नीचे कसरा है और मीम मुशद्दद है और इस मीम पर कसरा भी जायज है और फतहा भी, हिम्मिसा भी और हिम्मासा भी। तो ये चने के दाने को कहते हैं भाई। तो देखो चने का दाना कितना छोटा सा होता है, इसके बराबर छोटी सी कंकरी हुजूर अलैह सलाम ने उनको मारी। तो कहते हैं वरमा रसूलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम अल गामिदियत बिहसात मिसलल हिम्मिसती, और हुजूर अलैहि सलाम ने गामिदिया औरत को चने के दाने के बराबर कंकरी मारी। व कानत कद इतरफत बिज़िना, और तहकीक उन्होंने जिना का इतराफ किया था, यानी ये जिना इकरार से साबित हुआ था। तो इस सूरत में फिर इमाम इब्तिदा करता है, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा की। वयुग्सलु वयुकफ्फनु वयुसल्ला अलैही, वयुग्सलु और फिर इसको गुसल भी दिया जाएगा, जिसको रजम कर दिया गया है इसको गुसल भी दिया जाएगा। तो इसको युग्सलु भी पढ़ सकते हैं और युग्सलु भी पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं वयुग्सलु और फिर इसको गुसल दिया जाएगा जब ये मर जाए, वयुकफ्फनु और कफन दिया जाएगा, वयुसल्ला अलैहि और उस पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो रजम करने का यह मतलब नहीं है कि अब उसको गुसल भी नहीं देंगे और कफन दफन भी नहीं करेंगे, नहीं भाई, गुसल भी देंगे और कफन दफन भी करेंगे। कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलात व सलाम उली माइज़िन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के जो आपने हजरत माइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि इस्नऊ बिही कमा तस्नऊन बिमौताकुम, कि इस्नऊ बिही किन के साथ भी इस तरह करो, कमा तस्नऊन बिमौताकुम जिस तरह तुम अपने मुर्दों से करते हो। माइस रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब रजम कर दिया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके साथ भी ऐसे ही करो जैसे तुम अपने मुर्दों से करते हो, यानी इनको गुसल भी दो, कफन भी दो, नमाज जनाजा भी पढ़ो और इनको दफन करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया इस्नऊ बिही कमा तस्नऊ नबी मौताकुम, कि इनके साथ भी ऐसा ही करो जैसे कि तुम अपने मुर्दों से करते हो। वली अन्नहु कुतिला बिहक्किन, यहां साहिब हिदाय अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं, नकली दलील तो जिक्र फरमा दी कि हदीस में आया है और अकली दलील भी कहते हैं वली अन्नहु कुतिला बिहक्किन, क्योंकि इसको हक में कत्ल किया गया है, इसको हक के साथ कत्ल किया गया है भाई, ये अल्लाह का हुक्म था भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु कुतिला बिहक्किन, और इसलिए क्योंकि जिसको रजम किया गया है इसको हक के साथ कत्ल किया गया है, फला यस्कुतुल गस्लु कल मक्तूल क़िसासन, लिहाजा इसका गुसल साकित नहीं होगा कल मक्तूल क़िसासन, जैसे वो शख्स जिसको कत्ल कर दिया जाए बतौर क़िसास के, जैसे क़िसास में किसी को कत्ल कर दिया जाए तो उसको भी इसी तरह गुसल भी दिया जाता है, कफन भी दिया जाता है और उसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाती है। तो कहते हैं फला यस्कुतुल गस्लु कल मक्तूल क़िसासन, तो लिहाजा इसका गुसल साकित नहीं होगा जैसे कि वो शख्स जिसे क़िसासन कत्ल कर दिया जाए। वसल्लन नबी अलैहि सलातु वस्सलामु अलल गामिदियति रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामिदिया पर नमाज जनाजा अदा फरमाई, बादमा रुजिमत, बाद इसके कि जब उसे रजम कर दिया गया था। وَإِن لَّمْ يَكُن مُّحْسَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ, भाई अब गैर मोहसन की हद बयान करने लगे हैं साहिब हिदाया, अगर जिना करने वाला गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो कहते हैं वह इल्लम यकुन मोहसनन, और अगर जिना करने वाला मोहसन नहीं है, वह कान हुर्रन और आजाद है, फहदुहु मिअतु जल्दतिन, तो उसकी हद जो है वो 100 कोड़े हैं। लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, अज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, फजली दो, बस तुम लोग कोड़े लगाओ, कुल्लवा हिदिम मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को, मियाता जल्दत, इन 100 कोड़े। तो मालूम हुआ गैर मोहसन की सजा वो 100 कोड़े हैं भाई। इल्ला अन्नहुन तसखफी हकिल मोहसनी, यहां से साहिब हिदाया एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि कुरान के अंदर तो मुतलकन जिक्र है अज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत हो या जिना करने वाला मर्द, यहां तो कोई फर्क नहीं किया गया शादीशुदा में और गैर शादीशुदा में। मालूम हुआ चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, सबकी सजा यही 100 कोड़े हैं। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि यह हुक्म जो है शादीशुदा के बारे में मनसूख है
जी।
यह हुक्म शादीशुदा के बारे में मनसूख है। एक तो आयत है भाई, यह मेरे हाशिए में दी हुई है भाई, मेरे हाशिए में कहते हैं वहिया, और वो ये है, अशेख व शेखतु इजा जनाया फरजुमुहुमा अलबत्ता नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अजीजुन हकीम। अशेख व शेखतु कि शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत, इजा जनाया जब ये दोनों जीना करें, फरजुमुहुमा तो इन दोनों को रजम करो, अलबत्ता कतई तौर पर, नकालम मिनल्लाहि, नकाल सजा को कहते हैं, नकालम मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से बतौर सजा के, वल्लाहु अजीजुन हकीम और अल्लाह जबरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। तो याद रखो उलमा फरमाते हैं कि ये जो आयत है अशेखु व शेखतु इजाजन आया फर्जुमुहुमा अलबत्ता नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अजीजुन हकीम कि ये भी आयत है, ये भी आयत है, अलबत्ता इसकी तिलावत मनसूख हो चुकी है, तो इसकी तिलावत तो मनसूख हो चुकी है लेकिन इसका हुक्म अभी भी बाकी है। तो ये आयत अशेख व शेखतु, इसके अंदर शादीशुदा मर्द और औरत जब वो जिना कर लें उनका हुक्म बयान किया गया है। तो मालूम हुआ ये आयत नासिख है भाई, चुनांचे अज़ानियतु वज़ानी का हुक्म आम था लेकिन उसमें से शादीशुदा के हक में यह हुक्म मनसूख हो गया। अलबत्ता शादीशुदा के अलावा जितने हैं उनका यही हुक्म होगा कि अगर वो जिना कर लें तो उन्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन शादीशुदा के हक में यह 100 कोड़े वाला हुक्म मनसूख हो गया है, उनको रजम किया जाएगा। एक तो ये आयत है नासिख अशेख व शेखतु, और नीज हुजूर अलैह सलाम का अमल भी, हुजूर अलैह सलाम ने भी शादीशुदा जो जिना करने वाले थे उनको रजम फरमाया, उनको कोड़े नहीं लगाए। तो ये आयत भी नासिख और हुजूर अलैह सलाम का अमल भी अज़ानियतु वज़ानी के हुक्म के लिए नासिख है शादीशुदा लोगों के हक में। तो कहते हैं इल्ला अन्नहुन तसख फी हक़िल मुहसनी, मगर ये कि इस आयत का हुक्म मनसूख है फी हक़िल मुहसनी शादी शुदा के हक में, फबकिया फी हक़ी गैरिही मामूलन बिही, तो ये हुक्म बाकी है गैरों के हक में मामूलन बिही मामूल बिही होकर। ये जो सौ कोड़ों का हुक्म है मोहसन के हक में यह हुक्म मनसूख है, और बाकियों के हक में यह हुक्म यह सौ कोड़ों वाला हुक्म मामूल भी ही होकर बाकी है, यानी इस पर अमल किया जाएगा। यह माना है फबकिया फी हक गैर ही, तो बाकियों के हक में यह सौ कोड़ों वाला हुक्म बाकी है मामूलन भी ही मामूल भी ही होकर। यअमुरु इमामु बिज़र्बिही बिसौतिन ला समरत लहु ज़र्बम मुतवस्सितन, यअमुरु इमामु बिज़र्बिही, इमाम हुक्म देगा इस ज़र्ब के लगाने का, बिसौतिन सौत कोड़े को कहते हैं, ऐसे कोड़े के साथ ला समरत लहु जिसका समरा ना हो, ज़र्बम मुतवस्सितन मुतवस्सित दर्जे की ज़र्ब, गैर शादीशुदा को जब कोड़े लगाए जाएं तो इमाम ये सौ कोड़े लगाने का हुक्म देगा, लेकिन ये मुतवस्सित दर्जे की जर्ब होनी चाहिए, बहुत सख्त जर्ब नहीं होनी चाहिए, और नीस उस कोड़े का समरा भी ना हो, उस कोड़े का समरा भी ना हो। अब इस समरा ना होने का क्या माना है, इससे क्या मुराद है, तो बस फुकहा फरमाते हैं कि समरा से मुराद उस कोड़े की गिरहे हैं भाई, बाज औकात चमड़े के दरमियान गिरा पड़ी होती है, दरमियान में किसी जगह थोड़ा सा मोटा है, जैसे भाई जैसे एक शाख होती है, शाख पर से जगह जगह और शाखें निकलती हैं, तो वो जो और शाखें निकल रही हैं आप उनको काट भी दें फिर भी इस शाख के ऊपर वो उसकी गिरा बनी सी रह गई भाई, तो ये अगर इस तरह के कोड़े के साथ किसी की पिटाई की जाएगी जिसमें गिरहें पड़ी होंगी तो इससे उसको ज्यादा तकलीफ होगी भाई, लिहाजा ऐसा कोड़ा होना चाहिए जिसमें गिरहें न पड़ी हों, और अगर कोई गिरहें बीच में पड़ी हुई हैं, अगर बाज जगह ये कोड़ा मोटा है तो इन गिरहों को खत्म किया जाएगा, फिर उसके बाद इस कोड़े से पिटाई की जाएगी। तो बाज उलमा फरमाते हैं कि समरा से मुराद ये गिरहें हैं भाई, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि समरा से मुराद ये है कि उस चमड़े के साथ कोई दुम वगैरह ना हो, यानी बाज औकात एक मरकजी चमड़ा है और उसके साथ फिर बाज औकात बारीक बारीक एक दो और चमड़े साथ लगे होते हैं दुम की तरह, तो इस सूरत में तो जब आप एक जर्ब लगाएंगे तो ये तो उसको तीन चीजें इकट्ठी लग रही हैं, ये तो गोया तीन जर्बें हो गई। मुराद ये है कि कोड़े की और शाखें ना हो, बाज औकात एक ही कोड़ा होता है लेकिन उसके साथ और शाखें सी भी बनी हुई हैं, तो ऐसा कोड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप एक जर्ब लगाएंगे वो तो एक जर्ब नहीं होगी, अगर दो शाखें साथ और हैं तो ये तो गोया तीन जर्बें आपने इकट्ठी लगा दी, एक मरकजी कोड़ा है और उसके साथ दो बारीक बारीक दुम बनी हुई है, तो अब ये तो एक जर्ब ना हुई, आप जब भी ये जर्ब लगाएंगे ये तो गोया तीन जर्बें आपने लगा दी। तो बास फुकहा फरमाते हैं कि समरा से मुराद यह है कि उस चमड़े में गिरहें ना पड़ी हों, और बास फुकहा फरमाते हैं कि समरा से मुराद यह है कि उस चमड़े की कोई और दुम वगैरह साथ ना हो गई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं यामुरुल इमामु बिज़र्बी ही, इमाम उसकी जर्ब का हुक्म देगा, बिसौ तीन ला समरा तलहू, ऐसे कोड़े के साथ जिसका समरा ना हो, जरबम मुतवस्सितन मुतवस्सित दर्जे की जरब, لأن عليا رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته, इसलिए क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इरादा फरमाया हद कायम करने का, कसरा समरतहु, तो उन्होंने उस कोड़े के समरे को तोड़ दिया, यानी उसके गिरहों को तोड़ दिया या उसके जो दुम वगैरह थी उसको तोड़ दिया। वल मुतवस्सित बैन अल मुबर्रही व गैर अल मुअलिम, मुबर्रिह भाई जरबे मुबर्रिह कहते हैं सख्त पिटाई करना, बुरी तरह मारना, यानी सख्त तकलीफ देने वाली जरब लगाना, और गैर मुअलिम वो जरब जो तकलीफ देने वाली ना हो। भाई मतन में आया था कि इमाम जो है हुक्म देगा ऐसी जरब लगाने का जो मुतवस्सित दर्जे की हो, अब मुतवस्सित से क्या मुराद है, तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि एक वो जरब है जो पूरी कुव्वत के साथ लगाई जाए, और एक वो जरब है जो बड़ी ही हल्की है जिसकी वजह से दूसरे को कोई तकलीफ ही नहीं होती, तो जरब मुतवस्सित इन दोनों के बीच में हो, यानी ऐसी जरब भी ना हो कि बे इंतहा तकलीफ तकलीफ देने वाली हो और ऐसी जर्ब भी ना हो जिसकी वजह से इसको कोई तकलीफ ही महसूस ना हो बल्कि मुतवस्सित दर्जे की हो। भाई तो कहते हैं वल मुतवस्सित बैनल मुबर्रिह व गैरिल मुअलिमी, और मुतवस्सित जर्ब वो है जो सख्त तकलीफ देने वाली जर्ब और वो जर्ब जो तकलीफ देने वाली ना हो उनके बीच में हो। मुतवस्सित जर्ब वो है जो बीच में हो उस जर्ब के जो सख्त तकलीफ देने वाली है और उस जर्ब के जो तकलीफ देने वाली नहीं है उनके बीच में हो, तो ये है मुतवस्सित जर्ब। भाई लिफ़ज़ा इल अव्वल इल हलाकी, इसलिए क्योंकि पहली किस्म जो है वो तो हलाकत तक पहुंचा देगी, अगर सख्त जर्बें लगाओगे ये तो वो इंसान मर जाएगा। भाई तो कहते हैं लिफ़ज़ा इल अव्वल इल हलाकी, इस वजह से कि पहली किस्म जो है वो हलाकत तक पहुंचा देगी, वखुलू विस्सानी अलिल मकसूदी, और दूसरी किस्म जो है वो तो मकसूद से खाली है, वहुल इंजिजार, और वो इसका रुकना है बाज आना है। भाई देखो ये जर्ब लगाने का मकसद क्या है कि मुजरिम भी आइंदा इस फेल से बाज आ जाए, लोगों को भी इबरत हो और ये मुजरिम भी आइंदा इस जुर्म से बाज आ जाए, इससे रुक जाए। तो अगर आप इसको दूसरी किस्म की जर्ब लगाते हैं यानी गैर मुअलिम जिसे इसको तकलीफ ही नहीं हो रही तो फिर तो यह जुर्म से बाज नहीं आएगा भाई, तो मकसूद हासिल नहीं होगा। भाई तो कहते हैं वखुलू विस्सानी अनिल मकसूदी, और इस वजह से कि दूसरी किस्म की जर्ब जो है यानी गैर मुअलिम जर्ब जो है वो मकसूद से खाली है, और मकसूद क्या है कहते हैं वहुवल इंसिजार, वो इसका रुकना है और बाज आना है जुर्म से। वयुनज़ाउ अनहु सियाबुहू, और इससे इसके कपड़े उतारे जाएंगे। याद रखो एक वो जर्ब है जो हद्दे ज़िना में लगाई जाती है, एक वो जर्ब है जो हद्दे कज़फ में लगाई जाती है। हद्दे ज़िना के अंदर भी मुतवस्सित जर्ब, हद्दे कज़फ के अंदर भी मुतवस्सित जर्ब, लेकिन फर्क यह है कि हद्दे ज़िना में कमीज वगैरह भी उतार ली जाएगी अगर मर्द है, मर्द है तो उसकी कमीज भी उतार ली जाएगी, अलबत्ता तहबंद या शलवार उसी तरह पहने रहेगा ताकि उसका सतर छुपा रहे। भाई तो कमीज उतार ली जाएगी और फिर जर्ब लगाई जाएगी हद्दे ज़िना में, लेकिन अगर हद्दे कज़फ जारी की जा रही है तो फिर कमीज नहीं उतारी जाएगी। अलबत्ता कोई मोटे कपड़े वगैरह पहने हैं तो वो उतार लिए जाएंगे, कोई कोट पहना हुआ है या स्वेटर पहना हुआ है या कोई और चीज पहनी है वो उतार ली जाएगी, क्योंकि अगर वो चीजें पहनी हो फिर तो ज़र्ब की तकलीफ ही महसूस नहीं होगी। भाई बात समझ में आ गई। तो ये तो मर्दों का हुक्म है, मर्द की कमीज उतार ली जाएगी, जबकि औरत जो है उसके अंदर सिर्फ अगर उसने कोई मोटी चीज पहनी हुई है स्वेटर या कोट वगैरह वो उतार ली जाएगी, बाकी इसी तरह उसको कपड़ों में जर्ब लगाई जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयुनज़ाउ अनहु सियाबुहु, और उस शख्स से उसके कपड़े उतार लिए जाएंगे। मानाहु दूनल इजारी, माना इसका यह है कि इजार के अलावा यानी शलवार या तहबंद के अलावा और कपड़े उतार लिए जाएंगे। लिअन्न अलीयन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना यामुरु बित्तजरीद फिल हुदूद, इसलिए क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तजरीद का हुक्म देते थे हुदूद में। तजरीद का माने नंगा करना, मुराद है सिर्फ यहां कमीज उतारना, इसलिए क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुदूद के अंदर तजरीद का हुक्म देते थे। वली अन्न तजरीद अबलगु फी ईसालिल अलम इलैही, और इसलिए क्योंकि नंगा करना यह ज्यादा अच्छा है तकलीफ पहुंचाने में, वरना तो कमीज होगी तो कुछ ना कुछ तकलीफ कम होगी, जब कमीज भी नहीं होगी तो अब तकलीफ ज्यादा होगी। तो कहते हैं वली अन्न तजरीद अबलगु फी ईसालिल अलम इलैही, और इसलिए क्योंकि नंगा करना यह ज्यादा अच्छा है तकलीफ पहुंचाने में। वहादल हद मबनाहु अला शिद्दत फिल ज़र्बी, और ये जो हद है यानी हद ज़िना, मबनाहु अला शिद्दति, इसकी बुनियाद शिद्दत पर है, फिल ज़र्बी ज़र्ब में, कि ज़र्ब में शिद्दत हो यानी थोड़ी सी सख्त ज़र्ब लगे, और वो कमीज उतारने से होगा कि कमीज उतार लेंगे तो ज़र्ब जरा सख्त लगेगी। तो कहते हैं वहादल हद मबना हो अल शिद्दत फिल ज़र्बी, और ये जो हद है इसकी बुनियाद ज़र्ब में शिद्दत पर है। वफी नज़इल इज़ारी कशफुल औरती, और बतलाया कि इजार नहीं उतारेंगे, तहबंद या शलवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि इस सूरत में तो कशफ औरत होगा, सतर खुल जाएगा भाई और उसका छुपाना वाजिब है। भाई कहते हैं वफी नज़इल इज़ारी कशफुल औरती, और इजार यानी तहबंद के उतारने में कशफुल औरती शर्मगाह का खुलना है। फल यतवक्काहु, लिहाजा इससे बचना चाहिए। وَيُفَرَّقُ الزَّرْبُ عَلَىٰ أَعْزَائِهِ اور ضرب کو تقسیم کیا جائے گا اس کے اعضاء پر, یعنی ایک ہی عضو پر ساری ضربیں نہیں لگائیں گے, ایک ہی عضو پر ساری ضربیں نہیں لگائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو وہ عضو ہی ضائع ہو جائے. لہذا جسم پر متفرق جگہوں پر ضربیں لگائیں گے, بھائی پورے جسم پر پھیلائیں گے, لیکن آپ کو بتائیں گے سر چہرے اور شرمگاہ پر ضرب نہیں لگائیں گے, سر چہرے اور شرمگاہ پر ضرب نہیں لگائیں گے, ان کے علاوہ باقی جسم پر ضربیں پھیلا کر لگائیں گے. تو کہتے ہیں وَيُفَرَّقُ الزَّرْبُ عَلَىٰ أَعْزَائِهِ اور ضرب کو پھیلایا جائے گا اس کے اعضاء پر, لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي عُزْوٍ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ ضربوں کو جمع کر لینا ایک ہی عضو میں, قد يفضي الى التلف کبھی پہنچا دیتا ہے ہلاکت تک, یعنی وہ عضو ہی ہلاک ہو جاتا ہے. والحد زاجر لا متلف اور حد جو ہے وہ تو ڈانٹنے والی ہے, لا متلف ہلاک کرنے والی نہیں, اس حد کا مقصد ڈانٹنا ہے اس کو ہلاک کرنا نہیں ہے. قال الا راسه ووجهه وفرجه, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں الا راسه سوائے اس کے سر کے, ووجهه اور اس کے چہرے کے, وفرجه اور اس کی شرمگاہ کے, یعنی یہ ضرب اس کے بدن پر اس کے اعضاء پر پھیلا دی جائے گی لیکن اس کے سر چہرے اور شرمگاہ کو بچایا جائے گا, ان پر ضرب نہیں لگائیں گے. دلیل کیا؟ کہتے ہیں لقوله علیہ الصلاۃ والسلام للذی امرہ بضرب الحد, بوجہ حضور علیہ السلام کے جو آپ نے حکم دیا اس شخص کو جو حد کی ضرب لگا رہا تھا, حضور علیہ السلام نے اسے حکم دیا اتق الوجہ والمذاکیر کہ چہرے سے اور شرمگاہ سے بچو, چہرے اور شرمگاہ سے بچو. بھائی تو کہتے ہیں لقوله علیہ الصلاۃ والسلام للذی امرہ بضرب الحد, بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے جو آپ نے اس آدمی سے فرمایا جس کو حد کی ضرب لگانے کا حکم دیا تھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق الوجہ والمذاکیر کہ چہرے اور شرمگاہ سے بچو. مذاکیر یاد رکھو یہ جمع ہے ذکر کی, اور یاد رکھو ذکر عربی زبان میں مرد کی شرمگاہ کو بھی ذکر کہتے ہیں, اور اسی طرح نر جو ہے نر یعنی مذکر اس کو بھی ذکر کہتے ہیں, تو جو مذکر ہو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں, البتہ پھر جمع کے اندر فرق کیا جاتا ہے. اگر ذکر سے مراد مرد ہے نر ہے یعنی مذکر ہے تو پھر اس کی جمع ذکور لائی جاتی ہے ذکور, اور اگر ذکر سے مراد مرد کی شرمگاہ ہے تو اس کی جمع مذاکیر لائی جاتی ہے, تو پھر جمع سے فرق ہو جاتا ہے. بھائی تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس ضرب لگانے والے سے کہا اتق الوجہ والمذاکیر کے چہرے اور شرمگاہ سے بچو, تو یہاں جمع کا لفظ استعمال فرمایا حضور علیہ السلام نے, حالانکہ چہرہ مفرد ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ شرمگاہ کو بھی مفرد ذکر ہونا چاہیے تھا, لیکن حضور علیہ السلام نے جمع فرمایا. علماء فرماتے ہیں مراد شرمگاہ اور اس کے ارد گرد کی ساری جگہ ہے, اس لیے حضور علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. آگے دیکھیے وَلِأَنَّ الْفَرْجَ مَقْتَلٌ اور اس لیے کیونکہ شرمگاہ جو ہے وہ تو محل قتل ہے, شرمگاہ پر ضرب لگائے گا وہ دوسرا آدمی تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْفَرْجَ مَقْتَلٌ اور اس لیے کیونکہ شرمگاہ جو ہے وہ تو محل قتل ہے, وَالرَّأْسَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِ اور سر جو ہے وہ تو مجمع حواس ہے, اس میں تو انسان کے سارے حواس جمع ہے, سارے حواس جمع ہے. دیکھو کانوں کے ذریعے سنتے ہیں ہم, وہ بھی اسی سر اور چہرے میں, ناک کے ذریعے ہم سونگتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں, زبان کے ذریعے ہم چکھتے ہیں, تو سارے حواس یہیں پر جمع ہیں, اور نیز عقل بھی یہیں پر ہے. تو اگر یہاں پر ضرب لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو عقل نہ زائل ہو جائے یا ان حواس میں سے کوئی ضائع نہ ہو جائے. بھائی تو کہتے ہیں والرأس مجمع الحواس اور سر جو ہے وہ تو مجمع حواس ہے, وکذا الوجه اور اسی طرح چہرہ بھی ہے وہ بھی مجمع حواس ہے, وہو مجمع المحاسن ایضا اور چہرہ جو ہے محاسن کا بھی مجمع ہے, مجمع ہے یعنی حسن والی چیزیں چہرے میں جمع ہیں. بھائی تو لہذا چہرے پر ضرب نہ لگائے. فلا یؤمن فوات شیء منها بالضرب, فلا یؤمن لہذا مامون نہیں ہوں گے, محفوظ نہیں ہوگا, فوات شیء منها ان میں سے کسی چیز کا فوت ہونا بالضرب ضرب کی وجہ سے, یعنی سر یا چہرے پر اگر ضرب لگائی جائے तो फिर कहीं ऐसा ना हो इन चीजों में से कोई चीज जाया हो जाए, फौत हो जाए। यह माना है फला युमनु, युमनु का तर्जमा कर ले महफूज होने के या मामून होने के। फला युमनु तो लिहाजा मामून नहीं होगा, फवा तुशय इमिनहा कि इनमें से कोई चीज फौत हो जाए, इनमें से किसी चीज का फौत हो जाने से हम मामून नहीं होंगे बिजरबी जरब की वजह से। वजालिका इहलाकुम मानन, और यह भी माना के एतबार से हलाक करना है। अगर जरब की वजह से उसकी बीनाई चली गई या उसकी गोयाई चली गई या उसकी सुनवाई चली गई, सुनने की ताकत चली गई, तो गोया तो आपने तो उसको हलाक ही कर दिया भाई। लिहाजा इसलिए सर और चेहरे पर भी जरब नहीं लगाएंगे। तो कहते हैं वदालिका इहलाकुम मानन, और इन चीजों में से किसी चीज का फौत हो जाना ये तो माना के एतबार से हलाक करना है। फला युशराउ हदन, लिहाजा ये बतौर हद के मशरूअ नहीं होगा, इनमें से कोई चीज जायज नहीं होगी। वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह युज़रबुर रासु अयज़न, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सर पर भी जरब लगाएंगे। रजा इलैही, इस कौल की तरफ उन्होंने रुजू फरमाया, पहले वो भी फरमाते थे कि सर पर जरब नहीं लगाएंगे, फिर उन्होंने इसकी तरफ रुजू फरमाया कि सर पर भी जरब लगाएंगे। व इन्नमा युज़रबु सौतन, एक ही कोड़ा लगाएंगे सर पर। क्यों? कहते हैं लिकौली अबी बकरिन रजी अल्लाह तआलान हो, बवजह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआलान हो के कौल के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआलान हो फरमाते हैं इज़रिबुर रासा के सर पर मारो, फइन्न फीही शैतानन, क्योंकि इसमें शैतान है। तो किसी के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआलान हो ने यह फरमाया था कि इसके सर पर मारो कि सर में भी शैतान है। तो जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल पहुंचा, तो आपने फिर रुजू किया कि सर पर भी एक जर्ब लगाई जाए भाई। लेकिन यह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का कौल है, जबकि हमारे दीगर आइमा फरमाते हैं सर पर जर्ब नहीं लगाई जाएगी। तो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इज़रिबुर रासा के सर पर जर्ब लगाओ, फइन्ना फीही शैतानन, क्योंकि इसमें शैतान है। कुल ना, हम कहते हैं तावीलुहू, इसकी तावील यह है कि अन्नहु काल जालिका फीमन उबीह क़त्लुहू, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स के बारे में यह फरमाया था उबीह क़त्लुहू जिसका कत्ल मुबाह था, जिसका कत्ल मुबाह था, यानी उसको कत्ल किया जा रहा था भाई। वह यू काल, और यह भी कहा जाता है कि इन नहू वरदा फी हर बीन, कि ये हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल वारिद हुआ है एक ऐसे हरबी के बारे में, काना मिन दुआतिल कफरती, जो कुफार के दाइयों में से था, वो आम काफिर नहीं था और लोगों को भी कुफर की तरफ दावत देता था। तो ये उस हरबी के बारे में है, तो मालूम हुआ उसको कत्ल करने का भी हुक्म दिया और फरमाया कि इसके सर पर भी जरब लगाओ। तो कहते हैं वह युकालू, और कहा जाता है इन्नहु वरदा फी हरबी, इनके ये वाला कौल वारिद हुआ है कैसे हरबी के बारे में, कान मिन दुआतिल कफरती, जो काफिरों के दाइयों में से था, वल इहलाकु फीही मुस्तहक्कुन, और हलाक करना उसके अंदर मुस्तहक था, यानी वो हलाक करने का मुस्तहक हो चुका था। वह युज़रबु फिल हुदूदि कुल्लिहा क़ाइमन गैर ममदूदिन, और जर्ब लगाई जाएगी फिर हुदूद कुल्लिहा तमाम हुदूद में, काइमन इस हाल में कि वो शख्स खड़ा होगा, वो जो मुजरिम है उसको खड़ा करके जर्ब लगाई जाएगी भाई। ये मर्दों का हुक्म है और औरतों को बिठा कर जर्ब उनको लगाई जाएगी। तो कहते हैं वयुज़रबु फिल हुदूद कुल्लिहा काइमन, और तमाम हुदूद के अंदर खड़े करके जर्ब लगाई जाएगी, गैर ममदूदिन, इस हाल में कि ममदूद ना हो, इस हाल में कि वो गैर ममदूद हो। गैर ममदूद का क्या माना ये आगे तफसील बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया। बाज उलमा फरमाते हैं गैर ममदूद का माना यह है कि बाज औकात यूं किया जाता है कि मुजरिम को जमीन पर लेटाया जाता है, पांव की तरफ से एक शख्स पकड़ लेता है, सर की तरफ से दूसरा आदमी पकड़ लेता है, और इस तरह खींच कर उन्होंने उसको जमीन पर लिटाया हुआ है। मद्दून का क्या माना, खींचना, गैर ममदूद जिसको खींचा न गया हो। तो इस तरह जमीन पर लिटाकर और खींच कर पकड़ना इस तरह नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको खड़ा करके जरबें लगाई जाएंगी। जबकि बाज फुकहा फरमाते हैं गैर ममदूद का माना यह है कि वो जो कोड़े लगाने वाला है वो अपना हाथ अपने सर से ऊपर नहीं लेके जाएगा, अगर सर से ऊपर लेके गया यह तो इसने कोड़े को खूब खींच दिया है, अब तो बड़ी सख्त जर्ब लगेगी, लिहाजा सर से ऊपर हाथ को नहीं खींच सकता। और बाजों ने कहा कि गैर ममदूद का माना यह है कि जर्ब लगाने वाला जब जर्ब लगाए तो जर्ब लगाकर फिर एकदम वो वापस खींचता है उस कोड़े को, तो एक तो जर्ब लगी है और फिर साथ ही जब वो वापस खींचेगा तो वो जिल्द पर रगड़ भी लगेगी, उसकी भी तकलीफ होगी। समझ में बात आ रही है? जर्ब लगाते ही फिर साथ ही कोड़े को वापस खींचना, इससे जर्ब भी लगी और जर्ब के बाद जब वापस कोड़े को खींचा तो उस बेचारे की कमर पर जबरदस्त रगड़ भी लग जाएगी भाई। तो ऐसी जर्ब लगाए जिसमें कोड़े को इस तरह वापस न खींचे। तो ये तीन माना बयान करेंगे खुद साहिबे हिदायत भी। एक क्या माना कि उसको लिटाकर जमीन पर दोनों तरफ से खींचा जाए और फिर मारा जाए, ऐसा ना हो। या बाजों ने कहा यह माना है कि कोड़ा मारते हुए कोड़े को सर से ऊपर ना खींचे, और बाजों ने कहा यह माना है कि जर्ब लगाने के बाद उसकी जिल्द पर कोड़े को वापस न खींचे, वरना तो इससे उसको ज्यादा तकलीफ होगी। तो कहते हैं वयूज रबू फिल हदूदी कुल्लिहा कायमन गैर ममदूदिन, और जर्ब लगाई जाएगी तमाम हदूद के अंदर इस हाल में कि वो शख्स खड़ा हो गैर ममदूदिन और वो गैर ममदूद हो। लिकौल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बवजह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के कि उन्होंने फरमाया यूज रबुर रिजाल फिल हदूद क़ियाम वन निसा उक़ूदा, कि मर्दों को हुदूद में मारा जाएगा इस हाल में कि वो खड़े हों और औरतों को मारा जाएगा इस हाल में कि वो बैठी हुई हों। वली अन्न मबना इकामत हद अलत तशहीरी, और इसलिए क्योंकि हद कायम करने की बुनियाद अलत तशहीरी तशहीर पर है कि हद की शोहरत होनी चाहिए, हद की शोहरत होनी चाहिए, लोगों को पता चले ताकि लोग आइंदा ये जुर्म न करें। तो कहते हैं वली अन्न मबना इकामत हद अलत तशहीरी, और इसलिए क्योंकि हद कायम करने की बुनियाद तशहीर पर है। वल कियाम अब लगुफी ही, और कियाम इसमें ज्यादा अच्छा है, खड़े करके पिटाई करेंगे तो सबको नजर आएगा दूर दूर तक भाई। तो कहते हैं वल कियाम अब लगुफी ही, और कियाम इसमें ज्यादा अच्छा है। सुम कौलुहू गैर ममदूदिन, फिर जो इमाम मोहम्मद रहमल्ला का कौल मतन में आया था गैर ममदूदिन, उसका क्या माना है? अब वो तीन माना बयान करेंगे। तो कहते हैं सुम कौलुहू गैर ममदूदिन फकद कीला, तो तहकीक कहा गया है अल मद्दु अयुल्का अलल अर्जी वयू मद्दु, के मद ये है यानी खींचना ये है, अयुल्का अलल अर्जी के उस मुजरिम को जमीन पर डाल दिया जाए, वयू मद्दु और उसको खींचा जाए, कमा युफअलु फी ज़मानिना, जैसे कि हमारे जमाने में किया जाता है, यानी एक तरफ से एक आदमी पकड़कर खींचता है और दूसरी तरफ से दूसरा आदमी। वकीला, और कहा गया है अयु मद्द सौतु फयरफअहु ज़ारिबु फौका रासिही, के खींचने का माना यह है अयुमत दस सौतु, के कोड़े को खींचा जाए, फयर फाउहु जारिबु, तो पिटाई करने वाला उसको बुलंद करे, फौका रासी ही अपने सर के ऊपर भाई। वकीला, और कहा गया है कि खींचने का माना यह है कि अयुमत दहु बाद जरबी, कि उस कोड़े को खींचे बाद जरबी, जरब लगाने के बाद, यानी उसकी जिल्द पर ताकि रगड़ लग जाए। तो कहते हैं वकील, और कहा गया है अयुमत दहु बाद जरबी, के खींचना यह है कि जरब लगाने के बाद उस कोड़े को खींचा जाए, वदालिका कुल्लुहू ला युफालू, और ये सब जो है ला युफालू, ये नहीं किए जाएंगे, लिअन्नहु ज्यादतुन अलल मुस्तहक़ी, इसलिए क्योंकि ये जायद है मुस्तहक पर, जिस सजा का ये शख्स मुस्तहक है ये उस पर जायद सजा है, ये नहीं दी जाएगी। वह इनकान अब्दन जलदहू खमसीन जल्दतन, और अगर वो जिना करने वाला गुलाम है या इसी तरह बांदी है तो जलदहू खमसीन जल्दतन, तो उसको 50 कोड़े लगाएगा काजी। लिकौल ही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, बांदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, कि फअलैहिन्न इन बांदियों पर निस्फ मा अलल मुहसनाती, निसफ है उसका वो जो आजाद पाकदामन औरतों पर है, इन बांदियों पर उसका निसफ है मीनल अज़ाब यानी के सजा, इन बांदियों पर आजाद औरतों के मुकाबले में निसफ सजा है, और इससे मुराद कोड़े हैं क्योंकि रजम की तो तंसीफ नहीं हो सकती। तो गुलाम और बांदियों को तो मैंने बताया रजम किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एहसान और रजम के अंदर शर्त थी कि वो आजाद होने चाहिए, और गुलाम और बांदियां तो आजाद नहीं हैं, तो उनकी सजा कोड़े हैं और वो भी निसफ हैं आजाद के मुकाबले में, यानी 50 कोड़े। तो कहते हैं लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, फअलैहिन्ना, तो इन बांदियों पर, निसफु मा अलल मुहसनाती, निसफ है उसका जो पाक दामन आजाद औरतों पर है, मिनल अजाब, यानी कि सजा, नजलत फिल इमाई, ये आयत जो है बांदियों के बारे में नाजिल हुई है, तो यही हुक्म गुलामों का भी है, गुलामों का भी यही हुक्म है। वली अन्न रिक्का मुनक्किसुन लिन्नियमति फयकूनु मुनक्किसन लिलउकूबति। भाई निकाह के मसले में जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि गुलामी तंसीफ करती है, चीज को आधा कर देती है, नियमत हो वो भी आधी हो जाएगी और सजा हो वो भी आधी हो जाएगी। चुनांचे आजाद आदमी चार निकाह कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, गुलाम में तंसीफ हो गई, गुलाम ज्यादा से ज्यादा दो निकाह कर सकता है, और आजाद आदमी जो है उसको 100 कोड़े लगेंगे तो गुलाम को 50 कोड़े लगेंगे। तो जब नियामत के अंदर तंसीफ हो रही है तो सजा के अंदर भी तंसीफ होगी, यानी आधी हो जाएगी। कहते हैं वली अन्न रिक्का मुनक्किसुन लिन्नियमती, मुनक्किस का माना है कमी करने वाला, वली अन्न रिक्का मुनक्किसुन लिन्नियमती, और इसलिए क्योंकि गुलामी जो है वो कमी करने वाली है नियामत में, फयकूनु मुनक्किसन लिलउकूबती, तो ये सजा में भी कमी करने वाली होगी। वली अन्न जिनायता इंद तवाफुरिन नियमी अफहशु, लिअन्नल जिनायता, कहते हैं इसलिए क्योंकि जुर्म जो है इंद तवाफुरिन नियमी, नियमतों की कसरत के वक्त, अफहशु, ज्यादा बुरा होता है। जब नियमतें कसीर हैं उसके बाद जुर्म किया जाए तो यह ज्यादा बुरा है, लिहाजा इसकी सजा भी ज्यादा होगी। तो आजाद आदमी जुर्म करेगा तो 100 कोड़े लगेंगे, और जब नियमतें कम हैं तो सजा भी उसी के बकदर कम हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नल जिनायता इंदा तवाफुरिन नियमी अफहशु, इसलिए क्योंकि जुर्म जो है नियमतों की कसरत के वक्त ज्यादा बुरा होता है, फयकूनु अदअ इल तगलीजी, तो वो ज्यादा दावत देने वाला है सख्ती की तरफ। वो जुर्म जो नियमतों की ज्यादती के वक्त किया जाए वो ज्यादा बुरा है, तो वो ज्यादा दावत देता है कि सख्ती की जाए। यह माना है फयकूनु अदआ इल तगलीजी, तो लिहाजा यह जुर्म जो है ज्यादा दावत देता है सख्ती करने की। वर्रजुलु वल मरअतु फी ज़ालिका सवाउन, और इस हद के अंदर मर्द और औरत बराबर हैं, यानी मर्द को भी 100 कोड़े लगेंगे, औरत को भी 100 कोड़े लगेंगे। तो कहते हैं वर्रजुलु वल मरअतु फी ज़ालिका सवाउन, और मर्द और औरत इस हद में बराबर हैं, लिअन्ना नुसूस तश्मलुहुमा, इसलिए क्योंकि नुसूस दोनों को शामिल हैं। मैंने आपको बताया था नस जो है कुरान और हदीस को कहते हैं, तो कुरान और हदीस की जो नुसूस हैं वो दोनों को शामिल हैं, उनमें जो अहकाम हैं वो दोनों को शामिल हैं। भाई तो गैर अन्नल मरअत ला युनज़ाउ मिन सियाबिहा इल्ला अल-फर्वु वल-हश्वु, मगर ये कि औरत जो है उससे उसके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, इल्ला अल-फर्वु वल-हश्वु, सिवाय फर्व और हश्व के। फर्वन, फर्वन कहते हैं पोस्तीन को, फर्वन पोस्तीन, पोस्तीन भाई आप जानते हैं ये जानवरों को ज़िबा करने के बाद इनके चमड़े को दबागत देकर कपड़े की तरह कोट वगैरह बना लेते हैं, इसको कहते हैं फरवन। ये जो जानवरों का चमड़ा है इसको दबागत देकर कपड़े की तरह नरम बना लिया जाता है, और उसके कोट और जैकेटें वगैरह ये चीजें बनाई जाती हैं सर्दी से बचने के लिए, इसको फरवन कहते हैं, और उर्दू में इसको पोस्तीन कहते हैं। और हशवन, हशवन वैसे तो वो चीज है जो किसी में भरी जाए, जैसे रुई जो है, रुई को रजाई में भी भरा जाता है, रुई को तकिए में भी भरा जाता है, इसी तरह जैकेट वगैरह इन चीजों में भी रुई वगैरह चीजों को भरा जाता है ताकि सर्दी महसूस न हो। भाई तो हशवन उस चीज को कहते हैं जिसको दूसरी चीजों में भरा जाए जैसे रुई वगैरह, लेकिन मुराद यहां वो कपड़ा है जिसके अंदर रुई वगैरह को भरा जाए, तो मोटा कपड़ा सर्दी वगैरह का जो है वो मुराद है भाई, जैकेट वगैरह। तो कहते हैं औरत से उसके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, इल्लल फर्वु वल हश्वु, मगर पोस्तीन और मोटे कपड़े कोट जैकेट वगैरह जो है वो उतार लेंगे। लिअन्ना फी तजरीदिहा कश्फल औरती, इसलिए क्योंकि औरत को नंगा करने में कश्फ औरत है, उसका सतर खुलेगा। वल फर्वु वल हश्वु यमनाआनी वसूल अल अलम इलल मज़रूबी, भाई ये फर्व और हश्व को क्यों दूर करेंगे औरत से? कहते हैं इसलिए क्योंकि अगर ये कोट वगैरह पहना होगा फिर तो उसे ज़र्ब की तकलीफ ही नहीं होगी। तो कहते हैं वल फर्वु वल हश्व यमनाआनी वसूल अल अलम इलल मज़रूबी, इसलिए क्योंकि ये पोस्तीन और कोट वगैरह जो हैं ये रोकते हैं तकलीफ के पहुंचने को, इलल मज़रूबी मज़रूब तक। वसतरु हासिलुम बिदूनिहिमा, और सतर तो इनके बगैर भी हासिल है, औरत ने कपड़े वगैरह तो पहने हुए हैं तो इनको उतार भी देंगे तो सतर फिर भी हासिल है। तो कहते हैं वसत रुहासिलुम बिदूनिहिमा फयुनज़ानी, तो सतर इनके अलावा भी हासिल है, फयुनज़ानी लिहाजा इनको उतार लिया जाएगा। वतुज़रबु जालिसतन, और औरत को ज़र्ब लगाई जाएगी इस हाल में कि वो बैठी हुई हो, लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। पीछे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल आया था कि हुदूद के अंदर मर्दों की पिटाई की जाएगी उनके खड़े होने की हालत में और औरतों की पिटाई की जाएगी उनके बैठने की हालत में, तो लिहाजा औरतों को बिठाकर उनको कोड़े लगाए जाएंगे। तो कहते हैं वतुज़रबु जालिसतन लिमा रवैना, और औरत की पिटाई की जाएगी इस हाल में कि वो बैठी हो, लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। वली अन्नहु अस्तरु लहा, और नीज इसलिए क्योंकि इसमें इसके लिए ज्यादा सतर है बिठाकर ज़र्ब लगाने में। बात समझ में आ गई? चलिए बस वहादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।